जैसे ही बच्चा पैदा होता है, अलबत्ता उससे पहले का भी मरहला एक होता है जो मेरे ख्याल में नशोनुमा में बहुत मुअस्सर होता है बच्चों के, लेकिन जब से पैदा होता है तो एक परेशानी शुरू हो जाती है। खुद बच्चे को यकीनन होती होगी कहाँ हम आ गए, लेकिन वालदैन को बहुत ज्यादा होती है किस तरह से इस बच्चे की जिस्मानी और रूहानी तरबियत की जाए कि ये सही रास्ते पर निकल जाए। क्या किन चीजों का, कब से आप लोग देखते हैं इस मसले को?
देखिए, बच्चा जो ही पैदा होता है तब से लेके और बच्चे को हम एडोलसेंट तक जो है फॉलोअप करते हैं, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक बच्चे को कम से कम 5 साल तक उसका एक फॉलोअप जो है रेगुलर फॉलोअप होना चाहिए, और इसमें कई अनासर का जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है। तमाम अनासर जैसे कि खुराक है, एनवायरनमेंट है बच्चे का, और घर घर में अगर हम बात करें तो उसके वालदैन, उसके रिलेटिव्स, रिश्तेदार, सारे इन तमाम चीज़ों का असरअंदाज बच्चे की नशोनुमा के ऊपर होता है, उसके किरदार पे, उसके जहनी शख्सियत के ऊपर, उसकी जिस्मानी तंदुरुस्ती के ऊपर, उसका माशरे में किरदार के ऊपर। तो ये तमाम अनासर जो है बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो साइंटिस्ट जो हैं वो ज़्यादातर जो सेंसिटिव हैं बच्चे के लिए, उसकी नशोनुमा के लिए, वो पहले 5 सालों के अंदर हैं, उसके शुरू में, पैदाइश के फौरन बाद जो पहली चीज़ होती है, जो ज़रूरी होती है, वो उसकी खुराक, सिक्योरिटी और अम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम, उसके तमाम हफाजती टीके जितने भी हैं वो मुकम्मल, इसके ऊपर पेरेंट्स को कार्ड दिया जाता है और वो पूरा इम्यूनाइजेशन का प्लान होता है। उसको फिर खुराक के बारे में भी फवक्तन फवक्तन बताते रहते हैं कि आप लोगों ने किस तरह की उसको जो है खुराक इस्तेमाल करानी है। और अगर हम एक वन बाय वन इनको डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले न्यूट्रिशन जो है वो बच्चे की ग्रोथ के ऊपर बहुत असर होता है। शुरू पहली ग़ज़ा तो दूध है। दूध में आप बच्चे को माँ का दूध सबसे ज़्यादा, माँ के दूध जितना जितना टाइम है बच्चा ले सकता है मैक्सिमम कोशिश करें वो माँ का दूध पिए। फिर जब वो शिफ्ट होता है तो कोशिश करें कि वो बकरी का, गाय का, ऊँट का दूध, जो जो वो हज़म कर सकता है बच्चे की खुराक में, दूध की हर तरह की जो शक्ल है, हर तरह की जो टाइप है दूध की, वो बच्चे की खुराक में शामिल करें। फिर आहिस्ता आहिस्ता फल इस्तेमाल कराएं, बॉयल वेजिटेबल इस्तेमाल कराएं, और फिर उसकी ग़ज़ा के हर हिस्सा मुकम्मल होना चाहिए। उसकी ग़ज़ा में फल, दूध, सब्जी, गोश्त, दालें, तमाम चीज़ें हों, लेकिन जंक नहीं हो। देखें, अगर बच्चे को हम टॉफीज और फ्लेवर्स, आइसक्रीम और इनके ऊपर लगाते हैं तो हमारे पास खुश्क मेवा जात हैं। हम खुश्क मेवा जात बच्चे को जो है वो टॉफी की जगह दे सकते हैं, दूध से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो बच्चे को दे सकते हैं। तो जितनी उसकी ग़ज़ा सादी और मुकम्मल होगी उतनी बच्चे की नशोनुमा के लिए बेहतरीन होगा। क्योंकि
अच्छा,
जो
एक एक चीज़ है वो ये है कि आमतौर से मतलब वालदैन थोड़े दिन के अंदर बच्चों के कहने लगते हैं कि इसको मीठी चीज़ें बहुत पसंद है, या इसको फला खाना जो है जिसमें तेल में जो तरातर है इसको बहुत पसंद है। ये जो डेवलप होता है, टेस्ट जो डेवलप होता है, तो ये बच्चे करते हैं या खुद वालदैन मजबूर करते हैं
देखिए, ये
उन्हें?
इसको टॉलरेंस कह लें या थ्रेश होल्ड कह लें, जैसे कि आपने अभी एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट का अपना जायका है, तो ये जो आप क्रेविंग डेवलप करते हैं ये पेरेंट्स खुद डेवलप करते हैं। अगर आप बच्चे को शुगर नहीं देते हैं और चीनी के बगैर दूध पिलाते हैं तो बच्चे को चीनी की तलब नहीं होगी, लेकिन अगर बच्चे को आप चीनी डाल के दूध पिलाना शुरू कर देंगे तो बच्चा फीका दूध नहीं पिएगा, फीका शरबत नहीं पिएगा। तो जब कुदरती मिठास से आप बच्चे को हटा कर एक आर्टिफिशियल उसके फ्लेवर्स में लेके जाएंगे तो बच्चा उसका आदी हो जाएगा, उसको वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। तो सादा ग़ज़ा देने का मकसद यही है कि बच्चा जो है वो सादी ग़ज़ा से मैक्सिमम जो है उसको वो नशोनुमा उसकी हासिल कर सके, और ताकि उसके दांत खराब ना हो। क्योंकि अगर आप शुगर फ्री डाइट देंगे तो बच्चे की जो है एक तो ग्लूकोज इंटॉलरेंस और जो ग्लूकोज का प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा, दांत और मुंह के जो इन्फेक्शन है वो नहीं होंगे। और सादा ग़ज़ा में ये भी शामिल है कि देखें, रंगीन टॉफियां, केक्स, बिस्किट्स, बेकरी, ये तमाम चीज़ें भी अवॉइड करनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें जो हैं बच्चे के लिए, क्योंकि वो उसकी जो भूख है उसको सेटिस्फाइड होने से पहले ही ख़त्म कर देंगी, तो वो एक चीज़ मैदे के लिए भी और बच्चे की नशोनुमा के लिए भी ठीक नहीं है। बच्चे का प्रॉपर ब्रेकफास्ट होना चाहिए, उसका प्रॉपर रात का खाना होना चाहिए, इसी तरह दिन में किसी ना किसी तरह फल और दूध भी जो है उसकी ग़ज़ा में शामिल होना चाहिए। और देखे, माँ के लिए जरूरी है कि वो देखे कि कहीं बच्चे का वजन कम हो रहा है या बच्चा बड़ा नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें जो हैं वो मसाइल के, जैसे कि इसके हर एक ग्रोथ के जो है माइलस्टोन हैं। जैसे आपका 4 महीने का बच्चा है तो वो 4 महीने के बच्चे के लिए जो माइलस्टोन है वो ये है कि बच्चा अपना सर खुद उठा सके। अगर आप उसको मैदे की तरफ उल्टा लटाएं तो वो 90 डिग्री अपना सर उठाने के काबिल हो सके, हाथ चीज़ों को अपने हाथों में पकड़ सके। और इसी तरह अगर वो साल का हो जाता है तो उसके हाथों की ग्रिप ज़रा मजबूत हो जाए, और 9 महीने के बच्चा कम से कम बैठने के काबिल हो जाए, अगर आप उसको सपोर्ट लगा के बैठें तो बैठ सके। 1.5 साल का बच्चा कम से कम खड़ा हो सके, और 2 साल का बच्चा कम से कम भाग सके और अपनी चीज़ों को पकड़ सके। तो हर एक उम्र में बच्चे के लिए अपने माइलस्टोन्स हैं, और वो अचीव होना और वो पूरे होना मतलब कि बच्चे की डिवेलपमेंट खुराक के हवाले से बिल्कुल ठीक हो रहे हैं। इसी तरह खुराक में अगर हम मजीद चीज़ें देखें तो आपने प्रोसेस्ड फूड जो भी हम अगर देखें आजकल बड़ा, जैसे नूडल्स है,
यकीनन गिज़ा जो है बहुत अहम चीज़ है, पहले दिन से, बल्कि पहले दिन से भी पहले जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है उस वक्त से। माहौल कितना असरअंदाज हो सकता है?
जी मैं, एनवायरनमेंट बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज हो, रिसर्च प्रूफ किया है कि अगर आप उसको बच्चे को खुला माहौल देते हैं, साफ पानी देते हैं, तो बच्चा मैक्सिमम तरीके से सेहतमंद तरीके से जो है वो डेवलप कर सकता है। आप अगर बच्चे को एक बहुत कंजस्टेड एरिया में, छोटे घर में और छोटे एक एनवायरनमेंट में आप अगर उसको ग्रो करते हैं तो आप देखेंगे कि रिसर्च ने प्रूव किया कि बच्चों की हाइट नहीं डेवलप होती, बच्चा जो है अपनी कद में नहीं प्रॉपर तरीके से बड़े होते, बच्चों का ज़हनी नौशनुमा जो है वो कमज़ोर हो जाती है। तो एनवायरमेंटल में जो बेसिक उसके फैक्टर्स हैं, जैसे कि साफ हवा होनी चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, पानी साफ होना चाहिए, फिर एनवायरमेंट के अंदर जो माहौल का सफाई है वो भी बहुत ज़्यादा जो है असरअंदाज करती है। जैसे कि अगर आप बहुत गंदा माहौल है तो वो अननेसेसरी जो है वायरल इन्फेक्शंस, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस या पैथोजेंस जो हैं कीड़े मकोड़ों की, कम्युनिकेबल डिजीजेज जैसे भी हैं, सांस की बीमारियाँ कर सकती हैं, जिल्द की बीमारियाँ कर सकती हैं, तो पेट खराब बच्चों का हो सकता है। तो ये जो अर्ली एज में, जो शुरू के सालों में बच्चा अगर बीमार होना शुरू हो जाता है तो उसको ज़िंदगी भर की कई जो हैं वो बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि उनका दिल कमज़ोर हो जाता है, उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, एसाब कमज़ोर हो जाता है, नज़र कमज़ोर हो जाती है, और इसी तरह स्किन के ऊपर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस जो हैं वो लग जाते हैं जो कि आपकी इम्यूनिटी को, वो मदाफ़त को कमज़ोर कर देती है। तो हमारे माहौल का पूरा जो है वो भी, बच्चे का माहौल भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा होना चाहिए।
डॉक्टर साहब, लेकिन जो आजकल की ज़िंदगी है वो, ये शहरों में जो लोग आके बस गए हैं और शहरों की सूरत हाल तकरीबन पूरे दुनिया में एक ही जैसी है, बुरी हालत हो गई है, शायद चंद ही ममालिक हों जहाँ पे उनकी कैपिटल्स या दारुल हुकूमत जो है बहुत ही साफ़ सुथरे हों, ये सारे स्टैंडर्ड्स हों उसमें, लेकिन आमतौर से नहीं है। तो इस सूरत हाल में हम अपने बच्चों को किस तरह से वो अच्छा माहौल, अच्छी माहौलियात फराहम करें?
अच्छा देखिए, ये नो डाउट कि डेवलप्ड कंट्रीज़ और डेवलपिंग कंट्रीज़ में सफाई का जो है कॉन्सेप्ट वो थोड़ा सा पुअर है, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि लोगों ने और रिसर्च में उन्होंने टास्क फोर्स बनाई है कि उन्होंने अपने गाँव तक जो है बहुत अच्छे साफ़ किए हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एग्जांपल थाईलैंड की है, तो उन्होंने अपने गांव में एक कॉटेज इंडस्ट्री बनाई है और उन्होंने पानी को और वाटर कैनाल को और जो उनकी ओपन सीवेज सिस्टम है उसके अंदर उन्होंने खास किस्म की फ़िश ग्रो की है ताकि मॉस्किटो और कीड़े जो हैं वो नहीं हों। उन्होंने अपने माहौल को एलर्जन फ्री करने के लिए दरख्त की बार्क के ऊपर मुख्तलिफ तरह के पौधे मजीद जो हैं, जो क्रॉलिंग जो हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, वो ग्रो की हैं ताकि माहौल में ऑक्सीजन मैक्सिमम पैदा हो सके, और एक छोटे से एरिया के अंदर आप एक साफ सुथरी, यानी कि ट्रैफिक के बावजूद भी, ट्रैफिक के बर्डन के बावजूद भी, आपके पास थोड़े से हिस्से में जितनी भी आप ग्रीनरी कर सकें तो उसमें आप हवा साफ रख सकें। आपके पास दूसरी एग्जाम्पल सिंगापुर की है। सिंगापुर ने भी बहुत अपने माहौल के ऊपर, एनवायरमेंट के ऊपर बहुत काम किया है, और क्योंकि देखें जो आपका ये गाड़ी के धुआं जो निकलता है ये इतना बच्चे की ज़हनी नशोनुमा के लिए खतरनाक है, जैसे आप कहते हैं लेड पॉइजनिंग है, तो वो आपके बच्चे को जो है ज़हनी तौर पर स्ट्रांग होने ही नहीं देता। अगर आप एनवायरनमेंट में देखें तो हमारा मीडिया का जो है एक्सपोजर, गाइडलाइंस कहती हैं कि बच्चे को 2 साल से पहले तक आपने टेलीविजन दिखाना नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बच्चे की माओं के गोद में बच्चा भी है और गैजेट्स भी हैं, एक नहीं दो दो गैजेट्स हैं, टैबलेट हैं, और वो तमाम चीज़ें बच्चे को अननेसेसरी जो है वो रेडिएशंस का एक्सपोजर दे रही है। अगर वो रेडिएशंस बड़ों में सिर्फ कान तक पहुंचती हैं तो वो बच्चे के पूरे स्कल में आगे पीछे घूमती हैं, मतलब बच्चा इतना परमिएबल है, इतने आसानी से वो रेडिएशंस गुजर जाती हैं, तो अननेसेसरी जो इलेक्ट्रॉनिक और टेक्नोलॉजी का एक्सपोजर है वो भी ठीक नहीं है। फिर अगर माँ प्लास्टिक के दूध, प्लास्टिक की बोतल में दूध गर्म करती हैं ओवन के अंदर, वो भी जो है बच्चों के लिए खतरनाक है, कुछ ऐसे टॉक्सिन्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं दूध के अंदर कि वो बच्चे के दूध जो है बच्चे के पीने के काबिल नहीं रहता। तो मॉडर्नाइजेशन की जहाँ अपनी बड़ी सहूलतें हैं वो बच्चे की डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए बच्चे को जितना खेलना कूदना और खुले माहौल और खुली हवा और इसका जो है दिया जाए उतना बच्चे की परवरिश के लिए बेहतरीन है।
वालदैन का बहुत अहम किरदार है उसमें, और क्या क्या काम करने चाहिए वालदैन को?
देखिए पेरेंट्स के लिए कोई गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल नहीं है कि आपने ये प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं और आपको इस तरह का बच्चा मिलेगा। तो ये बड़ा वेरी करता है फैमिली टू फैमिली, जियोग्राफिकली, लेकिन इसके कुछ बुनियादी असूल हैं जो कि हर कलर नस्ल की डिस्क्रिमिनेशन के बगैर आपको करने ही करने हैं। उसमें ये चीज़ है कि आप बच्चे को प्रॉपर टाइम दें, प्रॉपर उसको प्रोटेक्ट रखें, बच्चे जब सवाल करे तो बहुत सोच समझ के उसको मुनासिब जवाब दें, उसके जो वक्त के साथ बढ़ते हुए क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती हैं, वो हर तरह का सवाल करता है, तो पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसको एक बैलेंस जो है वो जवाब दें। फिर उसको पेरेंट्स के जो माँ बाप का आपस के दरमियान का ताल्लुकात जो हैं वो भी बच्चे की नशोनुमा के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। अगर वालिद की बच्चे की वालदा के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं तो अल्टीमेटली बच्चे के ऊपर भी असर अंदाज होगा। और इसी तरह अगर एक जॉइंट सिस्टम है और रिश्तेदार भी साथ में रह रहे हैं तो रिश्तेदारों की भी जो उनके भी जो आपस के ताल्लुकात हैं वो बच्चे के सोशल बिहेवियर को असर करते हैं। तो बड़ा ज़रूरी है कि एक खुशगवार माहौल जो है बच्चे को दिया जाए ताकि बच्चा एक अच्छे किरदार का मालिक बने, कोई उसमें झूठ चोरी का सर ना हो, जो हम देखते हैं कि छोटी छोटी बातों के ऊपर गलत बयानी कर देना। हम गलत बयानी को अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे और उसको नहीं करेंगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा जो है वो उसको झूठ लेगा या उसके मामूल की वो आदत बन जाएगी। इसी तरह हम पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चे के साथ बुक शेयर करें, जो अर्ली उसके लिए जो डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो बुक रीडिंग और बुक शेयरिंग है, मतलब उसको इस चीज की तरफ उसका रुझान बढ़ाएं, और जो उसकी गेम्स में जो मैथमेटिकल छोटे छोटे टास्क हैं वो उसकी गेम होनी चाहिए तो ताकि उसका रुझान बढ़े। इसी तरह उसको मालूम होना चाहिए कि उसको दिन के एक हिस्से में खेलना है और खेलने के लिए भी टाइम है। फिर डिसिप्लिन भी करें उसको, लेकिन विदाउट हार्शनेस, सख्ती और मजाज की सख्ती और जबान की सख्ती से आप डिसिप्लिन नहीं सिखा सकते। डिसिप्लिन एक बड़े अच्छे तरीके से भी और ख़ुद सेल्फ एग्जांपल जो है पेरेंट्स बन सकते हैं। अगर आप खुद आपके किरदार में वो चीज़ें नहीं हैं और बच्चे के ऊपर आप मसलत कर रहे हैं तो मुश्किल है। फिर इसी तरह ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई पेरेंट्स के अंदर अब्यूज़िव ट्रेंड्स ना हो, जैसे किसी किस्म की ड्रग अब्यूज़ या स्मोकिंग भी जो है वो ना हो। फिर आपको ये भी पता हो बच्चों को एक जो रूटीन के घर के काम है उनमें आप इन्वॉल्व उसको करें, उसकी पार्टिसिपेशन उसको हो। फिर बच्चे को सेंसिटिव भी करना है कि वो दूसरों के लिए, अपने छोटे बहन भाइयों के लिए, अपने बड़े भाइयों बहन भाइयों के दरमियान में भी एक अच्छा रिस्पेक्टेबल रिलेशन रखें। फिर ये भी ज़रूरी है कि आप बच्चे को मेहमान कैसे डील करना है उसके भी मैनर्स आने चाहिए। बच्चे को ये भी मालूम होना चाहिए अगर पेरेंट्स घर में नहीं हैं तो हमने किस तरह से जो है वो अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो देखना है। तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अर्ली डेवलपमेंट में चूंकि देखिए जो फर्स्ट अर्ली डेवलपमेंट की चीज़ों में जो चीज़ें आप बच्चे को सिखा देती हैं, वो बच्चे की ज़िंदगी, वो बच्चे की फितरत बन जाती है, वो आप बदल नहीं सकते जब तक खुद वो सेल्फ उसको क्रिटिसाइज करके तो उसको कहीं चेंज ना करे। तो वो जो फर्स्ट 10 ईयर्स हैं टीचिंग के, पेरेंट्स के और इन्वायरमेंटल न्यूट्रिशनल हैं, वो बच्चे की कुदरती फितरत का हिस्सा बन जाती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स जिनके बच्चे जो हैं अगर हम देखें कि बहुत माशरे में अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, तो उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है कि उनके पेरेंट्स ने बड़ा भरपूर तवज्जो और अपना बड़ा अच्छा टाइम जो है वो बच्चों के ऊपर लगाया।